ओम शांति। बाबा के घर में विशेष मधुबन की इस पावन धरनी पर आप सभी बहुत अच्छे योग के गहरे अनुभव कर रहे होंगे। ये बाबा की चरित्र भूमि, तपस्या भूमि, जहां योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज स्वतः योग लगा रहता है। बाबा के अंग संग का अनुभव होता है। एक गीत है कि कण कण से तेरी याद आती है, यही अनुभव मैं समझता हूं आप सब इस मधुबन की धरनी पर कर रहे होंगे। बाबा यहाँ पत्र लिखते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ बच्चों से मिलते थे, यहाँ योग करते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ सैर करते थे। तो पूरा ही ये पांडव भवन बाबा की तपस्या स्थली है और यहाँ पर आने वाले अपने आप ही सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन जाते हैं। ऐसा अनुभव मेरा भी है, आपका भी होगा। सेवाओं के विस्तार के कारण हम लोगों को सब जगह इधर उधर जाना पड़ रहा है। अधिकतर शांतिवन में बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। मानसरोवर हो गया, मनमोहिनी वन हो गया, ज्ञान सरोवर हो गया, तो इसलिए सब तरफ चक्कर लगता है। फिर भी ये हमारा पांडव भवन सचमुच तपस्या स्थान बहुत खींचता है और जब यहाँ आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अव्यक्त वतन में आ गए। तो आप सब उसका आनंद ले रहे हो। ऐसी ही सदा आनंदमय खुशनुमा जीवन, ब्राह्मण जीवन, इतनी श्रेष्ठ, इतनी भाग्यवान जीवन है जिसमें हम सबको डायरेक्ट परमात्मा की पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, श्रेष्ठ मत मिल रही है। हम उनके आज्ञाकारी सपूत बच्चे, बाबा के हर खजाने के मालिक हैं। लेकिन इतने सब खजाने देते भी, कहता है देता तो मैं सबको एक समान हूं, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं देता। एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है और एक जैसा पढ़ाता है। ऐसा नहीं किसी स्टूडेंट को स्पेशल पढ़ाता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, फिर भी पढ़ने वाले नंबर वार बन जाते हैं। कोई एकदम ऊंचे से ऊंचे डबल ताजधारी राजा बन जाते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, कोई प्रजा बनती है, कोई दास दासी, कोई नौकर चाकर। संगम युग की पढ़ाई ही हमारे पदों को निर्धारित कर देती है। इसलिए हरेक बाबा के बच्चे को यथार्थ रीति से विधि पूर्वक हर नियम, मर्यादा और श्रीमत, ये शब्द अलग हैं लेकिन लगभग एक दूसरे से मिले जुले ही हैं। जब हम नियमों पर आते हैं तो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, हमारे खान पान, रहन सहन, जो भी हमारी जीवनचर्या है उसके अंदर कई प्रकार के नियम, जो ब्राह्मण जीवन में अगर कोई संपूर्ण रीति से पालन करते हैं तो कोई भी प्रकार की मेहनत का, मुश्किल का अनुभव उन्हें नहीं करना पड़ता। और जहां जरा भी मर्यादा की, नियम की रेखा का उल्लंघन करते, वहां पर ही कई प्रकार की प्रॉब्लम उनके आगे आ जाती है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि हम बाबा के बनाए हुए नियमावली को ध्यान पर रखें। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने एक बहुत सुंदर दिनचर्या बनाई, अमृत वेले का योग, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, घर ग्रस्त में रहते हैं, सबके लिए कंपलसरी किया कि अगर बाबा से मिलना है, शक्ति लेनी है, वरदान लेने हैं, सकाश लेनी है, कोई भी प्रकार से बाबा को राजी करना है तो आप सबके पास वो समय है अमृत वेले का 4 से 4:45 का। ज्यादा हट नहीं करना है, ज्यादा अलबेला भी नहीं बनना है। इसलिए अमृत वेले के योग पर अगर हमारा विधि पूर्वक ध्यान है, अटेंशन है, तो तो बहुत सहज स्वतः दिन की दिनचर्या में उसका बल मिलता है, शक्ति मिलती है और योगी जीवन का अनुभव होता है। वास्तव में योग लगाने की चीज नहीं है, ये तो बाबा की याद है और जहाँ दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, वहाँ याद स्वतः रहती है। इसलिए योग लगाने वाले नहीं, बाबा चाहता है मेरे बच्चे योगी जीवन वाले बने, जीवन ही योगी बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते उनकी दृष्टि से, उनके बोलचाल से, उनके वाइब्रेशन से, वो पवित्र वाइब्रेशन, वो पवित्र शक्तियां झलकती रहे, दिखाई दे, तो हमारी योगी जीवन है। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर नियमावली बनाई, सेंटर्स खुलवाए, प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने सेंटर पर आए, डायरेक्ट आकर के बाबा की सकाश का, अपने बहनों के पवित्र वाइब्रेशन का, वहाँ के वायुमंडल का फायदा ले, स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करें। स्टूडेंट लाइफ कहते हैं दी बेस्ट लाइफ है, और अगर कोई आत्मा स्टूडेंट बन करके रहती है तो कई प्रकार के झंझटों से, जवाबदारियों से मुक्त रहती है। और बाबा ने अपने बच्चों को गॉडली स्टूडेंट बनाया है, स्वयं भगवान पढ़ाने वाला है, वही हमारा सुप्रीम शिक्षक है, और उसी की पढ़ाई जो निमित्त बाबा ने रखी है, बहनों को, टीचर्स को बिठाया है अपने अपने स्थानों पर, उनको उस गद्दी पर बिठाया है जिस गद्दी का भी अगर हम सम्मान करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा बल मिलता है, जैसे श्रीमत की हम सब पालना करते हैं। इसलिए सेवा केंद्रों पर जाकर के, बाबा के क्लासरूम में बैठ करके विधि पूर्वक मुरली सुनना, समझना, ध्यान देना उस पर, ये एक नियम है। कुछ कारण बनते हैं, जैसे अभी 2 साल लॉकडाउन के अंदर सबको रोका गया कि आप सेंटर्स पर ना आए, अपने अपने घरों पर रहें, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट ने भी कायदे बनाए, लॉकडाउन किया और उसके कारण सेंटर्स पर आना बंद हुआ। लेकिन हमने देखा जो बाबा के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे थे, उन्होंने एकांत का अच्छा लाभ लिया, बहुत अच्छी तपस्या की और बहुत सुंदर कई बातों को घर बैठे सुना, समझा, साइंस के साधनों का भी बहुत फायदा लिया। लेकिन मुझे भी रामानुसार इस लॉकडाउन के 2 साल में पूरे विश्व के अंदर एक ही स्थान पर रहते, जैसे जाने का कहें बुद्धि योग से, उनसे मिलने का, ऑनलाइन क्लासेज कराने का अवसर मिला। मैंने देखा कई बाबा के बच्चे तो बड़े अलर्ट हैं, एक्यूरेट हैं और हर नियम मर्यादा का पालन करते हुए वो जैसे स्टूडेंट लाइफ में घर में रहते भी वो अनुभव करते हैं। लेकिन कई बार जब क्लासेज कराते थे तो कोई कोई वीडियो ऑन हो जाते, दिखाई देते सामने, वो बिस्तर पर लेटे लेटे मुरली सुन रहे हैं, स्नान भी नहीं किया है शायद, और वही कलर ड्रेस में बैठे हैं, लेटे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो ऐसा अलबेलापन आया जो कई बार एक शब्द बाबा का हम सुनते हैं, जैसे कोई दुश्मन किसी पर अटैक करना चाहता है ना, तो उसको अटैक करने के पहले उसके सब रास्ते काटता है, उसके सप्लाई के जो साधन होते हैं, कहीं से बिजली है, कहीं से टेलीफोन है, कहीं से कोई भी चीज है, रसद है जो पहुंच रही है, उसके सब रास्ते, सब पुल पहले तोड़ देता है, क्योंकि उस पर अटैक करना है, कोई उसको और मददगार ना आ जाए। ऐसे ही संगम पर इस समय दिखाई दे रहा है कि माया पहले सब प्रकार के जो रास्ते हैं उनको कट कर रही है। ये अंतिम वार माया का जो हो रहा है, बहुत गहरा वार है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। क्योंकि अगर सेवा केंद्र से कनेक्शन तोड़ दिया, बहनों से कनेक्शन तोड़ दिया, जहां से हमें सप्लाई मिल सकती है वो सप्लाई ही कट गई, तो आप समझ सकते हो क्या करेगी माया। और वर्तमान समय बहुत सारे बाबा के बच्चे, जबकि खुल गया, सब छुट्टी मिल गई, सबका आने जाने का, सब ने प्रतिबंध हटा दिया गया, उसके बावजूद भी अभी भी बहानेबाजी, कितना बहाने करते हैं, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे घर वाले मना करते हैं, मेरे बच्चे रोकते हैं, मेरा क्या है, पहले नहीं रोकता था कोई, अभी बहुत सारे रोकने वाले आ गए। और इतने सारे प्रतिबंध हटने के बावजूद भी इतना सब फ्रीडम होने के बाद भी कई लोग अभी भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं जैसे। और जो हमें खुराक मिलनी चाहिए, जो हमें प्राप्तियां होनी चाहिए, उससे हम सब वंचित हैं, कई लोग वंचित हैं। हम अभी तक भी कई जगह जा रहे हैं भट्टियां कराने, क्लासेज कराने, 2-3 महीने में मेरे 3-4 चक्कर लग चुके हैं। अभी मैं 2 दिन में बेंगलोर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने देखा है कि कोई बाबा के बच्चे जो बहुत पक्के हैं, अनन्य हैं, जो निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वो तो क्लास में हाजिर हो जाएंगे, नहीं तो कहेंगे ऑनलाइन हम क्लास अपने घर में ही सुन लेंगे। आज जिस स्थान से हमें अलौकिक जन्म मिला, जिस स्थान से हमें अलौकिक पालना मिली, जिस स्थान से हम सबको इतनी मदद सहयोग मिल रहा है, उसी स्थान से अगर हम छूट करके, हम सोचते हैं हम तो डायरेक्ट मधुबन की मुरली सुन रहे हैं, हम तो डायरेक्ट वाराणसी की मुरली सुन रहे हैं, हम तो फलानी जगह की मुरली सुन रहे हैं। जिन्होंने जन्म दे के बड़ा किया, पालना की, जिस स्थान से आपने इतना सब प्राप्त किया, उस स्थान को छोड़ करके कहीं ना कहीं कई बाबा के बच्चे जैसे भटक रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, जो उनका तान मान धान सफल होना चाहिए, उसकी बजाय वो अलबेले हो करके, हाँ हम तो स्टूडेंट ही हैं, हम तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, हम तो बाबा के पक्के बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं, सूक्ष्म माया को समझ नहीं पा रहे हैं कि माया हमारे कनेक्शंस को कट कर रही है। ये उसके वार करने का एक सूक्ष्म तरीका है। इसलिए समझ करके यथार्थ जो विधियां बनाई गई, नहीं तो क्यों इतने सेंटर्स खोले गए, स्थान स्थान पर केंद्र खुले, बहनों को रखा गया, समर्पित हुई, और फिर भी जब हमारा शुरू में सेंटर्स खोलने का सिस्टम बना था, शायद आप सबको मालूम हो, पुराने जो होंगे, सिस्टम ये था कि जहां पर भी बहनों ने, पहले भाई बहनों ने मिल करके कहीं प्रदर्शनी लगाई, प्रदर्शनी के बाद जिनको इंटरेस्ट आया, जिनको अच्छा लगा, जिनको कोई अनुभव हुआ, उन्होंने लिखित में निमंत्रण दिया कि आप हमारे हेडक्वार्टर को बोला, अपने जोन को बोला कि इस स्थान पर सेंटर खुलेगा, तो इन बहनों की पूरी जवाबदारी, इनका खर्चा, यहाँ के मकान की व्यवस्था हम करेंगे, हम स्टूडेंट मिल करके इसको चलाएंगे, उसके बाद हमारे सेंटर्स खोले। लेकिन अभी चलते चलते इसमें इतना अलबेलापन आया है, ठीक है चल रहे हैं बस, बाबा तो रक्षक है ही, बाबा तो अपने बच्चों को जहां बिठाया है उनकी संभाल भी करता है, लेकिन जो हमारी जवाबदारियां होनी चाहिए, कई स्थानों पर मैंने देखा है, अनुभव किया है, बाबा के बच्चे उन जवाबदारियों से कतरा रहे हैं कि हमारी भी कुछ जवाबदारियां हैं, अगर हमें कहीं से पालना मिल रही है तो उसका रिटर्न भी हमें करना चाहिए। तन मन धन समय जो हमारे पास शक्तियां हैं, वो बाबा के कार्य में कहीं ना कहीं सफल हों। ऐसे नहीं हम तो स्टूडेंट, हम तो पढ़ रहे हैं, मुरली चल रहे हैं, तो ये जो एक कायदा बनाया गया कि क्लास के स्टूडेंट क्लास में आकर के रेगुलर मुरली सुने और अपने कार्यों में, बाबा की सेवाओं में हर प्रकार से सहयोगी बने, तन से, मन से, धन से, समय से, विशेषताओं से, तो वो एक कायदे थे। और कायदों का उल्लंघन जितना आत्मा करती है, आप सब समझते हो, ये बहुत सूक्ष्म बोझ है। योग के लिए 2 चीजें चाहिए। यथार्थ योग की परिभाषा परसों संडे के मुरली में बाबा सुनाते हुए कह रहे थे, यथार्थ योग माना, एक तरफ योग अग्नि का काम करता है जिससे परिवर्तन आता है। अगर आपने 30 साल 40 साल 50 साल योग किया है और आपके संस्कारों में वो शुद्धता नहीं आई है, पवित्रता नहीं आई है, दिव्यता नहीं आई है, आपकी बोलचाल की भाषा में परिवर्तन नहीं आया है, अहम समाप्त नहीं हुआ है, तो आपने योग क्या किया है? योग है ही अग्नि का काम करने वाला, जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन करता है, संस्कारों को स्वच्छ करता है, दिव्य बनाता है। उन संस्कारों में ही परिवर्तन नहीं आया तो योग यथार्थ कैसे है? कोई कहता मैं तो 2:30 बजे 2 बजे उठ के योग करता हूँ, मैं तो रेगुलर योग किया है, मैं तो रेगुलर मुरली सुनी है, जैसे मैं बहुत समझदार बन गया हूँ। लेकिन अगर अहम भाव ही नहीं समाप्त हुआ, अहंकार की भाषा ही परिवर्तन नहीं हुई, उसके जीवन में नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, मधुरता नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, तो क्या कहेंगे यथार्थ योग था। दूसरा, यथार्थ योग की निशानी है निरंतर हल्कापन, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, निरंतर हल्कापन, निरंतर खुशी। अगर हमारे जीवन में खुशी का अनुभव नहीं, सारी मुरली बाबा ने खुशी पर चलाई, बच्चे खुशी का आधार क्या है, खुशी कैसे जीवन में रह सकती है। जितना हम खुशी का दान करते हैं, जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, खुश करते हैं, सम्मान देते हैं, उतना हमें खुशी प्राप्त होती है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को यथार्थ योग सिखाया, जिस योग की निशानियां हैं कि एक तरफ हमारे विकर्म विनाश हुए, संस्कारों में शुद्धता आई, और दूसरी तरफ हमारे जीवन में बहुत हल्कापन, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है और निरंतर खुशी का अनुभव है। ऐसे नहीं कभी कभी वाले, बाबा कहता कभी कभी वाले तो कभी बहुत खुश रहते हैं और कभी एकदम डाउन हो जाते, सोडा वाटर हो जाते। इसलिए कभी कभी वाले बाबा को पसंद नहीं आते। जितनी मुरलियां बाबा की पढ़ेंगे उसमें एक शब्द है सदा, और सदा शब्द जब आता है तो सोचने लगते हैं ब्राह्मण सदा कैसे रहेंगे, कर्म करना है, व्यवहार में आना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी, सदा कैसे हो सकता है। लेकिन बाबा की श्रीमत यही है कि बच्चे अभ्यास करो कि मुझे सदा ही बाबा की याद में रह करके जो कर्म मिले हैं, जो कर्म हैं, वो कर्म बंधन नहीं है। ये एक नियम है ईश्वरी विश्वविद्यालय का, कर्म छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, व्यवहार छोड़ना नहीं है, लेकिन उस कर्म को योग में बदल देना है। कर्म योगी जीवन है, और सदा यही स्मृति रहे कि करावन हार कराने वाला है, हमें तो उसने निमित्त बनाया है। और हम निमित्त भाव से अगर वो कर्म करते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे हल्के रहते हैं कराने वाले ने करा दिया, कहीं मैंपन नहीं आता, कभी कुछ नुकसान हो गया उसमें दुख की फीलिंग नहीं आती, कुछ भी हो रहा है, जब करण करावन हार बाबा है और संगम ऊपर बाबा ने अपने बच्चों की जवाबदारी ली है, तो बाबा कहता है जो संबंध है वो सेवा के लिए है, कि जो भी आपको कार्य मिले हैं इसके पीछे सेवा समाई हुई है, सेवा समझ करके संबंध में आओ, व्यवहार में आओ, कर्म में आओ, बंधन बना करके नहीं, बंधन न बने। इस बात का इस समय ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म बंधन की रस्सियों को काटने का समय है। एक एक बाबा के बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में स्थित होने का समय है। सतयुग में जीवन मुक्त बनेंगे किसने देखा है, कहते हैं बाबा, बता रहे हैं, ज्ञान दिया है, समझ दी है, लेकिन वहां बंधन है ही नहीं, जब तो बंधन और मुक्ति का अनुभव कैसे होगा। संगम के समय पर बंधन हम देख रहे हैं, कितनी आत्माएं बंधी हुई हैं, देह का बंधन है, संबंधों का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन तो अपने ही मन का है, कमजोर संकल्पों का है, बंधनों में बंधी हुई आत्मा, उसको संगम पर बाबा बंधन मुक्त बनाना चाहते हैं, जीवन मुक्त बनाना चाहते हैं। हम सब कर्म करें, कर्मयोगी बनकर के कर्म करें, परिवार में रहें, लेकिन एक बहुत सुंदर विधि बाबा ने सुनाई है, नियम बताया है कि आप बैलेंस को कभी तोड़ना नहीं। जहां बैलेंस टूटता है वहां ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को बैलेंस से चलना सिखाया, न बहुत ऊंचा बहुत न बहुत नीचा। खर्चे में भी यही बताया, बच्चे इतना ऊंचे खर्चे, इतना अच्छा दिखावा नहीं करो जो लोग कहें, यहां पर तो बहुत धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ऐसे भी नहीं रहो जो लोग कहें जैसे इसके पास कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा बैलेंस है साधारण का, न गरीबी है न साहूकारी है, लेकिन साधारण जीवन है, और साधारणता में महानता दिखाई दे, साधारणता में अलौकिकता दिखाई दे, ये बाबा की श्रीमत है। आप परिवार में रहो, समाज में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन आपको देख करके लोग ये न कहें ये भी गृहस्थी हमारे जैसे ही तो हैं, हम गृहस्थी नहीं है। आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले इस बात को पक्का करना, बाबा के बच्चे बने माना हम सब गृहस्थी नहीं रहे, हम सब ट्रस्टी बन गए। जो कुछ बाबा ने दिया है हमें उसका मैनेजर बनाया है, संभालने के लिए दिया है, लेकिन कहता है बच्चे ट्रस्टी बन करके रहना। ये प्रभु अमानत है, ये तन भी उसकी अमानत है, ये मन भी उसकी अमानत है, और जो कुछ आपके पास धन है वो प्रभु अमानत है, वो कहीं पर भी कहीं भी इधर उधर व्यर्थ न जाए, बाबा के कार्यों में सफल हो जाए। संगम युग पर यही सबसे बड़ी समझदारी है कि हम सब बहुत बुद्धि से समझ से काम ले कि बाबा की अमानत को बढ़ाने का तरीका और संभालने का तरीका, दो तरीके हैं। कोई भी खजाने जो बाबा के दिए हुए हैं उनको हम बढ़ाएं, और बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे पास है उनको हम संभालें, कहीं उसमें कोई घुन न लगे, कहीं दीमक लगे, कहीं सीलन ना आ जाए, क्योंकि बहुत चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, ज्ञान से, योग से, इतने अच्छे संघ से, इतने अच्छे वातावरण से, ब्रह्मा भोजन से, बहुत सारी शक्तियां हमारी जमा हो रही हैं। मम्मा का एक शब्द मुझे बार बार याद आता है, मम्मा की मुरलियों में आता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 6 मास तक खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, लगन में मगन होकर रहते हैं, योग अच्छा करते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, ब्रह्मा भोजन पर ध्यान देते, संघ पर ध्यान देते, सब नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी बात पसंद नहीं आई तो मूड इतना खराब कर लेते जो 6 मास की हुई कमाई 5-10 मिनट में उनकी खत्म हो जाती, अपसेट हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, गुस्से में कुवचन बोल देते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, किनारा कर लेते हैं। जो एक योगी जीवन का अनुभव था वो 5-10 मिनट के जोश में जो बात पसंद नहीं आई, गुस्सा आ गया, अहंकार जागृत हो गया, तो की कमाई सब उसी समय सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए बहुत अटेंशन देना, जब बाबा कहते हैं जब कोई ऊंची चढ़ाई पर चढ़ता है ना तो बहुत संभल के चलता है, नहीं तो कहीं पैर फिसला तो कहते हैं गिरा आसमान से लटका खजूर में, ऐसा न हो जाए। कहीं ना कहीं कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति बना लेते हैं, नामाचार हो जाता, पूरे ब्राह्मण में नाम बाला हो जाता, लेकिन चलते चलते कोई इतना माया का जोर से थप्पड़ लगता है जो ऊपर से पैर फिसलता और एकदम नीचे चकनाचूर हो जाते। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, हम सबको अटेंशन देना चाहिए। मैं 3 बातें आज सुबह मैं क्लास करा रहा था, ऑनलाइन मेरा क्लास चल रहा था, तो 3 बातें हैं व्यक्ति को कहीं न कहीं से अपसेट कर रही हैं और अपसेट होने के कारण वो अपनी सीट से फिसल जाता है, खिसक जाता है, और बहुत सूक्ष्म है, हमारे नियमों में है, मर्यादाओं में है, बाबा ने कई बार सिखाया है, स्लोगन्स में हम लिख के रखते हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा है महत्वाकांक्षाएं जो हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको सीमित करो, अगर ये बढ़ती जा रही हैं तो कई समस्याओं को अपने आप जन्म दे रही हैं। महत्वाकांक्षाएं क्या रहती हैं, अगर कोई के पास कोई साधन है, सुविधाएं हैं, कोई का नाम हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हमारे साथ सेवा करने वाला है, उसको अच्छी पोस्ट पर बढ़ता जा रहा, प्रगति कर रहा है, उसका नाम हो रहा, उसकी महिमा हो रही है, तो हम समझते हैं हम भी इससे रेस करें, हम भी आगे चले जाएं, और उस रेस में रीस हो जाती है, और उस रीस के कारण जो हमारी महत्वाकांक्षाएं वो जब पूरी नहीं होती हैं तो कहीं न कहीं माया उस पर बहुत बड़ा अटैक करती है, और जब माया अटैक करती है तो अपनी तीसरे नेत्र पर उसका वार होता है, ऐसे वार नहीं करती, तीसरे नेत्र पर जो अनुभव का नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है, परखने का नेत्र है, उसको बंद कर देती है, परख ही नहीं सकता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि ब्राह्मण जीवन में जब हम बाबा के बने हैं, जो भी हमने किया, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, कुछ भी हमने किया है, क्या उसके रिटर्न की वर्तमान में इच्छा तो नहीं है? अगर उसकी इच्छा रख करके हम कर रहे हैं और वो पूर्ति नहीं होगी तो जरूर अपसेट होंगे, ऊपर से नीचे गिरेंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो केवल एक को ही करना है, किसी व्यक्ति को नहीं, कोई कुछ भी करे, एक ही व्यक्ति को फॉलो, बाबा ने ब्रह्मा को हमारे आगे रखा एग्जाम्पल कि ब्रह्मा बाबा आप बच्चों के आगे एक कंप्यूटर हैं, एक आदर्श के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, आप फुट स्टेप कदम पर कदम इनके ही रखना और किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना, चाहे यहां तक भी बाबा ने कह दिया इन दादियों को भी नहीं देखना, देखना तो केवल एक ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से बैलेंस युक्त जीवन में रह करके इतने बच्चों के बीच में रहे, प्रवृत्ति के बीच में रहे, सब कार्य संभाले, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन करते हुए भी अकर्ता होकर के रहे, कहीं भी मान सान नाम फूल माला, यहां तक भी जब बाबा जाते थे कहते थे एक भी कोई स्टेशन पर भीड़ नहीं करना, कोई गुलदस्ता लेके बाबा के आगे नहीं आना, बाबा स्वीकार तक नहीं करते थे। क्या बाबा की तपस्या थी, क्या बाबा का त्याग था, कहीं नहीं बाबा ने अपने आप को दूसरों के आगे रखा कि मैं बड़ा हूं, मैं कर रहा हूं कुछ। किसी ने बाबा की अगर भूल से भी महिमा कर दी तो बाबा कहता था बच्चे कराने वाला बाबा है, शिव बाबा करा रहा है, बच्चों से करा रहा है, ये बच्चे सब कर रहे हैं, ये तो बीच में दलाल है, ये कुछ नहीं करता। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया तब तो श्री नारायण बना है। तो अगर हम अपेक्षाएं लेकर के कोई भी प्रकार की कामना, बड़ा बन जाएं, आगे बढ़ जाएं, महारथियों की लाइन में आ जाएं, मेरा मीटिंग में नाम आ जाए, मेरी ये हो जाए, कई अपेक्षाएं, और वो अपेक्षाएं अगर चलते चलते वो पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति अंदर अंदर घुटता है। उसको लगता है इसको आगे बढ़ाया जाता है, मेरे को नहीं बढ़ाया जाता, इसको पूछा जाता है, मेरे को नहीं पूछा। उसकी खुशी गायब, उसका योग नहीं लगता, उसको मुरली में भी मजा नहीं आता, परिवार भी अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। फिर बहुत ध्यान देना, अरे बाबा इतना दे रहा है, अखुट खजाना दिया है, आज तक मुझे कभी भी स्टेज पर जाने की इच्छा जागृत नहीं हुई। प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ, बाबा आते हैं, मैं सामने मुरली टाइप करता हूँ, मैं बैठा हूँ, सब लोग जा रहे हैं, कोई केक काटने, कोई कैंडल जलाने, बाबा के साथ कोई मिलने, कोई कुछ करने, कभी मैं जबरदस्ती या बिना बाबा के बुलाए हुए स्टेज पर नहीं गया। बाबा ही इशारा करे आ जाओ बच्चे, आ जाओ इधर, तब गया हूं। ये अपेक्षा नहीं रखा और किसी से कहा भी नहीं है कि मेरे को क्यों नहीं चांस मिलता। बाबा इतना दे रहा है, इतना उसकी पालना में हम पड़ रहे हैं, इतना दिया है, क्या स्टेज पर जाके हमको मिल जाएगा। लेकिन कई आत्माएं इन छोटी छोटी कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर के कई प्रकार से अपने आप को डिस्टर्ब करती हैं। श्रीमत हम बच्चों को मिली है, निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि में योगी वो है जो समान स्थिति में रहता है। कुछ भी हो, समानता, अपनी स्थिति की समानता, हलचल न हो, वो भरपूरता की निशानी है। हलचल है मानो खाली है, कुछ चाहिए उसको, और भरा हुआ है, संपन्न है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, कुछ नहीं चाहिए, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब मुझे आशीर्वाद लेने की, बाबा का हाथ सिर पर रखाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा अपने आप सब कुछ दे करके अपनी गोद में पाल रहा है, बड़ा किया है, पालना दी है, इतना योग्य बनाया है, फिर क्यों अपेक्षाएं रखें। तो हमने देखा कि अपेक्षाएं अगर रह गई, महत्वाकांक्षाएं रह गई, तो आत्मा कभी भी इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर पाती। दूसरा दिखाई दे रहा है कि आजकल सूक्ष्म ग्रहचारी बहुत जल्दी बैठती है, ग्रहण लग रहे हैं। ग्रहचारी तब बैठती है तब कहते हैं ग्रहण को कोई देख लेता है, जैसे सूर्य चांद पर ग्रहण लगते हैं तो मना करते हैं देखना नहीं, अगर उस पर लग भी गया है, सूर्य चांद पर भी लग गया तो भी देखना नहीं, और यहां हम आपस में ये ऐसा है वो ऐसा है, इसकी कमी ये है, उसकी कमी ये है, फलाने बहुत अच्छी क्लास कराता है लेकिन उसके अंदर ये है, कई बार ग्रहण ये देख रहे हैं और इस ग्रहण के कारण चलते चलते आत्माओं के ऊपर ग्रहचारी बैठ रही है, और वो ग्रहचारी फिर बुद्धि को काम करने नहीं देती है। बुद्धिमान है, समझदार, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बुद्धि ठीक काम नहीं करती, निर्णय नहीं कर पाती, इसलिए बहुत संभल के चलने की जरूरत है, कहीं ऐसा वार माया न कर दे जो सूक्ष्म ग्रहचारी हमारी स्थिति को बिगाड़ दे। कितना लोग समझाएं, कितना उसको समझाया जाए, कोई की बात को समझ नहीं सकता, क्यों, ग्रहचारी उसके ऊपर है, उसको घेरे हुए है। इसलिए ध्यान देना, ब्राह्मण जीवन में कभी भी किसी के कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव, चाहे जितना बड़ा है, मुझे बाबा ने कहा तुम्हें नहीं देखना है, तुम अपनी आंख बंद करो इसके लिए। है सबके अंदर, विशेषताएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन कमी और कमजोरियां भी अभी तक चल रही हैं, वो भी खत्म तो नहीं हुई हैं। जब वो अपनी कमी और कमजोरी को समाप्त करने की मेहनत कर रहा है, तो दादी मम्मा की बात मैं सुनाता हूं, कहती थी एक छोड़ने वाला छोड़ने की मेहनत कर रहा है, छोड़ना चाहता है, और दूसरा उसको देख करके, ग्रहण करके अपने पास इकट्ठा कर लेता है। समझदार कौन है? समझदार तो वो है जो छोड़ने की मेहनत करता है, और देखने वाला उसका चिंतन करता है, फिर वर्णन करता है, फिर इधर उधर सुनाता है, उससे वायुमंडल बिगाड़ता है। जितना करने वाले पर पाप है, उससे ज्यादा वर्णन करने वाले पर चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अटेंशन देने की जरूरत है। ये हमारे ईश्वरीय नियम हैं, कायदे हैं, कि हम कभी भी कोई की कमी कमजोरी को देख करके, कोई की भी कुछ भी कर रहा हो, बाबा कहते तुम अपनी आंख बंद कर दे, अगर तुमको मंजिल पर पहुंचना है, साइट सीन देखना बंद कर दो, बाबा को देखो, मंजिल को देखो, मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है, मैं बाबा के घर में केवल एक ही उद्देश्य से आया हूं कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब नियम मर्यादाएं हैं। आज हम कहते हैं मनुष्य देव आत्माएं बनने वाले, नरश्री नारायण बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। अब देवता ही जीवन के लक्षण क्या हैं? कभी कभी मैं कहता हूँ देवता ही कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे। कभी विचार किया है देवता हम बनेंगे और चलन में सुधार ही नहीं आ रहा है, जैसे देखो वैसे चल रहे हैं। बहुत ध्यान देने की बात, ये मर्यादाएं हमारी जो बनी है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। बाबा केवल इस सृष्टि पर एक ही कार्य के लिए आया है, पतितों को पावन बनाने। कोई बिजनेस की बात करे, कोई बात करे, बाबा कहता है ये मेरे कनेक्शन की नहीं है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव थे, ब्रह्मा बाबा कई बच्चों को राय देते थे, बताते थे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि उनके पास अनुभव थे। शिव बाबा कहता है मैं केवल इस सृष्टि पर पतितों को पावन बनाने, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए आता हूँ। इसके बारे में ही मैं सब श्रीमत देता हूँ और उसके लिए ही मेरी सब मर्यादाएं बताई। तो शिव बाबा ने जो हमारी आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की पालना बताई, शुद्ध अन्न की पालना बताई, श्रेष्ठ संग की बताई, दैवी गुणों की बताई। योगी जीवन के चार पिलर बता दिए गए। हर आत्मा को ब्राह्मण जीवन में अगर उन्नति करनी है, योगी जीवन का अनुभव करना है, तो इसकी और गहराई को समझने की कोशिश करें। केवल ब्रह्मचर्य काम विकार की बात नहीं है, लेकिन एक ब्रह्माचारी जीवन जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, मुझे उसके आचरण पर चल करके दिखाना है। उनका देखना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बैठना। अब देखो साकार बाबा के समय तो बहुत कम बच्चे थे, बहुत कोटों में कोई थे, कोई ने देखा कोई ने नहीं। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर बाबा ने बहुत गहराई से स्पष्टीकरण दिया है। सब मुरलियों में ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, सब कुछ बताया है। इसलिए मैंने देखा नहीं है ठीक है, लेकिन बाबा ने जो कुछ बताया है, जो प्रैक्टिकल साकार में करके गए हैं, उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया अव्यक्त रूप में। हम उस पर ध्यान दें, बाबा ने इतना सब कुछ पढ़ाया है, हमने कितना उसको अपने जीवन में लाया है। प्रैक्टिकल जीवन में जितना आता जाएगा ब्रह्माचारी जीवन बन जाएगी और ये योगी जीवन सहज योगी हो जाएगी, पवित्र जीवन बन जाएगी। पवित्रता के लिए ही बाबा ने नियम बनाए, बच्चे बाहर का नहीं खाओ, भिखारी के हाथ का नहीं खाओ, तामसिक राजसिक भोजन नहीं स्वीकार करो। कितना बाबा ने नियम बना करके दे दिए, कई समझते हैं तो बहुत कड़े कायदे हैं और इतने हट से उसको पालन करने लगते हैं जो कई बार ब्रह्मा कुमारी जी का नाम भी बदनाम होने लगता है। कैसे परिवार के बीच में रहते युक्ति से मुक्ति लेनी है, विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, हठ नहीं करना है, जिद नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, लेकिन बहुत युक्ति से, स्नेह से, सम्मान दे करके। आज किसी ने अभी प्रश्न पूछा था मेरे से ऑनलाइन कि बाबा जो कह रहा है श्रीमत दे रहा है, हम बाबा की श्रीमत पर अगर चलते हैं तो बाबा हमसे संतुष्ट रहता है, लेकिन जितना हम श्रीमत और मर्यादाओं में पक्के होते जाते हैं उतना परिवार हमसे डिस्टर्ब हो जाता है, वो असंतुष्ट है। क्या करना चाहिए? वो नाराज है, क्या करूं मैं, उसको संतुष्ट करूं या इसको संतुष्ट करूं? हमने कहा आपके ऊपर निर्णय, क्या करना है आप सोच लो। बाबा ने श्रीमत दी है, श्रीमत अनुसार अगर कोई बच्चा दृढ़ता के साथ उसको पालन करता है, उस नियमों पर चलता है, भले उसका विरोध होता है थोड़े समय के लिए, लोग असंतुष्ट होते हैं, परिवार नाराज होता है, लेकिन आप अगर अपने दिव्य गुणों से संपन्न बन करके रहते हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे, उसके भेंट में आप गुस्सा नहीं कर रहे, आपके सामने कोई क्रोध में आ रहा है, कोई आग बबूला हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप शीतल हैं, शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे, आपकी छाप आज नहीं तो कल उसके ऊपर जरूर पड़ेगी कि इतना सब होते हुए भी इसको कुछ नहीं होता, जरूर इसको कोई शक्ति है, कोई मदद कर रहा है। अपने आप वो आत्मा संतुष्ट हो जाए, लेकिन क्या करूं, इसको संतुष्ट करना पड़ता है, इसको प्रसन्न कर, हमारे सब नियम मर्यादाएं जो टूट रही हैं उसके कारण ब्राह्मण आत्माएं बहुत रहमदिल बन गई। और वो रहमदिल होने के कारण बाबा तो कहता ना सबको संतुष्ट करो, कब नहीं कहा बाबा ने, कहा है, लेकिन संतुष्ट करने का मतलब ये तो नहीं है कि नियम और मर्यादाओं को तोड़ करके फिर संतुष्ट करो, उसमें पक्के रहो, आप उसको युक्ति युक्त अपने जीवन से उनको बताओ कि हमारी निजी धारणाएं हैं। आज कोई डॉक्टर किसी को कह देता है आपको बहुत हाई लेवल का शुगर है, आपको मीठी चीज टच भी नहीं करनी है, क्या जिद करता है? कोई परिवार वाला उसको जबरदस्ती खिलाता है क्या? नहीं खिलाता है। अब हमारे सुप्रीम डॉक्टर ने हमको बोल दिया है कि अभी कलयुग का अंतिम समय है, योगी जीवन बनानी है तो आपको ये परहेज पालन करनी है। हमको नियम बताए हैं, हम उसको पालन कर रहे हैं। आपको इसमें मदद करनी है तो करो, नहीं तो जैसे हम वैसे ठीक रहेंगे। लड़ाई करके, झगड़ा करके, तूमय में आकर के और अपने ज्ञान को बदनाम करना, ये वास्तव में श्रीमत नहीं है। श्रीमत ये कहती है कि आप सबके साथ मिल करके, समझा करके, झुक करके, सहन करके, नम्रता पूर्वक व्यवहार करके, सबको अपना बना करके चलो, ये है श्रीमत। न कि किसी से टकराव ले लो, किसी के पास एकदम दुश्मनी लेकर के वैर विरोध करके फिर चलोगे तो योगी जीवन का आनंद नहीं हो। सबसे बड़ा योग में दुश्मन है वैर विरोध। एक तरफ प्रभाव झुकाव लगाव है, किसी आत्मा से हम प्रभावित हो गए, कोई आत्मा ने मेरे ऊपर अपनी छाप डाल दी, बुद्धि उधर फटाफट भटक जाती है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, कई प्रकार से आत्माएं अपना प्रभाव डाल करके अपने अधीन कर रही हैं, खींच रही हैं लोगों को। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी से वैर है, विरोध है, नफरत है, घृणा है, कोई भी प्रकार की माया है, तो जब योग में बैठोगे उधर ही खींचोगे, वही खींचेगा। इसलिए ध्यान दो। बहुत अच्छी बात बाबा कहते हैं, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से वैर। किसी से विशेष स्पेशल दोस्ती कर ली तो दोस्त क्या करेगा। जगदीश जी की बात याद है, जगदीश भाई हमारे कहते थे, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। उन्होंने एक लेख लिखा था इस पर। दुश्मनों से तो अपने को बचाया जा सकता है, और दुश्मन जिसके नजदीक होते हैं, कहते हैं निंदक नियरे राखिए, जो निंदक होते हैं कोई भी प्रकार से हमारा अटेंशन तो खिंचवा देते हैं, और दोस्त लोग तो और हाँ हाँ करके और आगे करके और पाप करवा देते हैं। इसलिए ठीक यही है कि हम सबके साथ समझ करके चले, बहुत सुंदर बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ बनेगी। बिना बैलेंस के ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। बाबा ने एक बैलेंस हम सबको सिखाया है। आप अपनी प्रवृत्ति में रहो, सबसे पहले न्यारे बनो देहमान से। जितना आप देहमान से न्यारे बनते जाएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, उतना आपको सबका प्यार अपने आप मिलेगा। प्यारे ज्यादा बन गए तो कहीं फंस जाओगे या कोई को अपने में फंसा लोगे। इसलिए बैलेंस रखने के लिए, जैसे बाबा ने बैलेंस रखा है, दिखाया है, अव्यक्त बाबा का बैलेंस हमने देखा। बाबा आते हैं प्यार का सागर बनकर के, बच्चों को खूब प्यार लुटाते हैं, दृष्टि देते, टोली देते, ऐसे लगता है जैसे बाबा अभी बस यही हमारे साथ रहे। और जब जाते हैं तो ऐसे कितना भी गीत गाओ, कितना भी बुलाओ, एक सेकंड में न्यारे हो जाते हैं। हम सब देह भान से न्यारे रह करके अपने परिवार के बीच में रहते हुए सबको प्यार दो, संबंध निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी। न्यारे प्यारे का बैलेंस रख करके जितना न्यारे बनते जाओगे उतना सबका प्यार मिलेगा, और उस प्यार में कोई फंसेगा नहीं क्योंकि हम न्यारे हो जाते हैं। तो जितना आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करते हैं। मैं आपको 5-6 मर्यादाएं अपने जीवन की बताता हूं। स्मृति के लिए मर्यादाएं बाबा ने दी हैं, स्मृति केवल एक बाबा की रहे। जो बीती बातें हैं उन बीती बातों को, परसों की मुरली में था, डांट लगाओ, नाट करो। अगर मौज की जीवन का अनुभव करना है तो ब्राह्मण जीवन में डांट और नाट, ये दो शब्द याद करो। कितने अच्छे शब्द हैं, और सब बाबा के सुन करके, हाँ बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई। लेकिन प्रैक्टिकल लाने के लिए कोई बातें बीती हैं, कुछ हुआ है, किसी के साथ हुआ है इस जन्म में, जो लोग पीछे की जन्मों की बातें भूल गए, वो तो ड्रामा बहुत अच्छा है जो भूल जाते हैं। नहीं तो अगर वो याद रहे तो अपने को और परिवार, दूसरे परिवारों को भी डिस्टर्ब कर देंगे, वो तो भूल गए। लेकिन इस जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं, पाप हुआ है, कोई विकर्म हुआ है, कोई से कुछ लेन देन हुआ है, वो भूलती नहीं है, और वो भूत की तरह सताती है। यह भूत परेशान करता ना, ऐसे वो भूत उनको सताता रहता है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे बीती को चितो नहीं, उसको स्मृति में नहीं रखो, उसको बिंदी लगा दो, डॉट लगाओ। बाबा ने नया जीवन दिया है, नए संस्कार दिए हैं, नया लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो स्मृति के लिए मर्यादा है, जो कुछ बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दो। वृत्ति के लिए मर्यादाएं हैं, वृत्ति को बहुत अनासक्त बनाओ, बहुत उपराम बनाओ, बहुत न्यारी प्यारी वृत्ति बनाओ। जितनी वृत्ति आपकी शुद्ध होती जाएगी, उस वृत्ति से वायुमंडल क्रिएट होगा, उस वृत्ति से दूसरी की वृत्ति चेंज हो जाएगी। अब वृत्ति बनी कैसे, जो बातें हमारे संकल्प में चलती रहती हैं वो वृत्ति बनती जाती है। बार बार जो बात को रिवाइज किया है, वृत्ताकार के रूप में कोई संकल्प चलता है तो वृत्ति में चला जाता है और वृत्ति बार बार आत्मा को इधर उधर भटकाती है। संकल्प को कंट्रोल करेगा, वृत्तियां सूक्ष्म कहां की कहां भटक रही होंगी। इसलिए कहते हैं वृत्तियां बहुत चंचल हैं। हम सबको बाबा ने कहा बच्चे व्रत लो तो वृत्ति चेंज होगी। दृढ़ता का व्रत लो, कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं सोचना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। अपने आप व्रत से वृत्ति चेंज हो जाएगी। तो वृत्ति के लिए मर्यादा है, वृत्ति को बहुत उपराम रखो, न्यारी प्यारी रखो, अनासक्त रखो, वैराग्य की वृत्ति रखो, ये वृत्ति की मर्यादा है। दृष्टि हर आत्मा के प्रति कल्याण की है, शुभ है। दृष्टि के अंदर ये सब आत्माएं हैं, खेल खेलने के लिए आई हैं। हर एक ने ड्रेस अपनी अपनी पहनी है, ये सब अहम रूप आपस में भाई भाई हैं। ये दृष्टि की मर्यादा है कि हम दृष्टि को बड़ा पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए जितना हो सके हम आत्मा को देखने का अभ्यास करें। फिर हमारे बोल के लिए मर्यादाएं हैं कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी वही बोलो। बोल में बाबा ने परसों भी बताया, बच्चे जितनी मधुरता है, जितनी संतुष्टता है, जितनी सरलता है, वो बोल मर्यादा युक्त हो जाएगा। और बोल मर्यादा युक्त है तो संबंधों में कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनती। जब हमारे बोल बिगड़ते हैं तभी आपस में दुश्मनी और वैर बढ़ता है। इसलिए वैर दुश्मनी आपस के टकराव से बचने का साधन है, हम अपने बोल पर नियंत्रण करें, सीमित बोल बोलें। बाबा ने हमें ये मर्यादा सिखाई है। कर्म के लिए भी मर्यादा सिखाई है, बच्चे जो कर्म करो कर्म योगी बन करके करो, लक्ष्य रखो मुझे इससे सुख देना है, सुख लेना है। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से बाबा ने बहुत सुंदर मर्यादा बताई, मुझे हरेक को कुछ न कुछ देना है। बाबा ने अपने बच्चों को मास्टर दाता बनाया है, लेवता नहीं बनाया, देना। ये कुछ दे, ये बदल जाए, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मुझे प्यार करे। बाबा ने कहा ये सिद्धांत ही गलत है, ये मर्यादा ही नहीं है। बाबा ने अपने बच्चों को मर्यादा बताई है, बच्चे तुम देना सीखो, तुम दोगे तो अपने आप मिल जाएगा, मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। इसलिए देना है, देना है, देना है। उस दिन बाबा ने कहा किसी को हिम्मत दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो, जो उसको चाहिए शक्ति दे दो, शांति का वरदान दे दो, कुछ दो शब्द मीठे बोल दो। देना है, जो हमारे संबंध संपर्क में आए देते चलो, दोगे तो अपने आप रिटर्न आ जाएगा। देने की भावना बाबा ने अपने बच्चों में भरी है और अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है। तो मैं कहता हूं जो हमारी पवित्रता की मर्यादा है, दिव्य गुणों की मर्यादा है, शुद्ध अन्न की मर्यादा है, संघ की मर्यादा है, इसको जितना हम सब दृढ़ता के साथ पालन करते हैं और श्रीमत सिरमाते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को सोते उठते बैठते जागते खाते पीते चलते कर्म करते हर बात की श्रीमत दी है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आप कहो बाबा की क्या श्रीमत है, मुरली ही श्रीमत है। और मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करो, आपको हर बात के लिए बाबा गाइड कर रहा है, मत दे रहा है, राय दे रहा है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। श्रेष्ठ मत श्रीमत कहलाती है और उस श्रीमत को अगर हमने सिर माथे रखा जो बाबा कह रहे, तो बाबा की श्रीमत को समझ करके, अगर न समझ में आते, बाबा ने एक दिन कहा कोई बहनों की भी श्रीमत नहीं है, बड़ों की भी श्रीमत नहीं है, श्रीमत केवल एक शिव बाबा की है और वो शिव बाबा की श्रीमत मुरली के अंदर है। मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करो और श्रीमत अनुसार कदम पर कदम रखो, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हमारी जो मंजिल है बहुत ऊंची है, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के लिए हम सबको हर कदम नियम मर्यादाएं और श्रीमत को समझना है, यथार्थ रीति से समझ करके उस पर चलना है। संकल्प करो कुछ भी हो जाए हम अपनी मर्यादाओं में बहुत पक्के रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तब ये मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, सहज योगी जीवन है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, बहुत सारी बातें कहने की हैं लेकिन समय की सीमा होती है। वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें बहुत संभल करके चलना, क्योंकि बाबा का अव्यक्त पाठ पालना का पूरा हुआ, बाबा ने बच्चों को साकार में बहुत कुछ सुनाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, लायक बनाया है। अब रिटर्न करने के समय में कहीं बुद्धि भटक न जाए। बाबा की प्रभु लीला भी गुप्त रीति से चल रही है और सूक्ष्म अवज्ञाओं की सजाएं बहुत कड़ी हैं। वो कोई समझ नहीं सकता, उसकी खुशी गायब हो जाती है, वो रास्ते से भटक जाता, उसका योग टूट जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, कहीं भी कोई अवज्ञा न हो। श्रीमद् दी है, सब कुछ स्पष्ट है, हर एक ब्राह्मण आत्मा के आगे स्पष्ट है, कोई इसे छिपाया नहीं है। बाबा ने सब कुछ बताया है, हम उसको दृढ़ता के साथ पालन करते चलें। बाबा अपने बच्चों के साथ है, साथ ही रहने वाला है, कहीं अलग नहीं है, उसके साथ का अनुभव करो। जितनी बुद्धि स्वच्छ साफ निर्मल बनती जाएगी, जितनी बिल्कुल क्लीन बुद्धि होगी, बाबा की टचिंग आएगी, बाबा के साथ का अनुभव होगा, और कोई भी माया का रूप आएगा उसको आप परख लेंगे। और अगर जरा भी बुद्धि डिस्टर्ब हुई, इधर उधर की बातों में गई, तो कहीं ना कहीं माया खींच करके फिर से अपना बना लेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है, बढ़ाने का तरीका दान करो, और संभालने का तरीका चेकिंग करो। अटेंशन और चेकिंग, ये दो शब्द बाबा के बार बार ध्यान देना। हम दान करते चलें, अटेंशन से चलें और चेकिंग करें, तो जो खजाने हैं वो बढ़ते जाएंगे, और चेक करेंगे तो उसको संभाल सकेंगे और उनको बढ़ा सकेंगे। ओके, समय हो गया है। ओम शांति।
Thank you.